alihi ve ashabi ecmain sallallahu aleyhi ve
sellem. Hazrat se muaddibana guzarish hai ke sirf aaj ek din ke liye sunnatain apne gharon mein jaakar ada kar le, kyunki dusri jamaat ka bhi waqt qareeb hai. Guzarish hai ke sunnat o nawafil apne gharon mein jaakar ada kar le.
Alhamdulillah hamdan kaseeran mubarakan tayyiban fi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إذا أصبحت فلا تنتظر المساء میرے عزیزو میرے دوستو میرے بزرگو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کھل کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں تو مومن بن کے رہو, آدھا تیتر آدھا بٹر بننے سے کام نہیں چلتا. وہ کیا کی بولتے ہیں بنگلور والے, کوا چلے ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول بیٹھا. اسی لیے اللہ سمجھا رہے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مومن کی ایک شان ہے, وہ اللہ کو پہچانتا ہے, اس کے اندر طہارت ہے, ایمانداری ہے, سچائی ہے, وفاداری ہے, دیانتداری ہے. وہ دھوکہ نہیں دیتا کسی بھی, جھوٹ نہیں بولتا, سب کے ساتھ پیار محبت سے رہتا ہے, ہمدردی ہے اس کے اندر, صاف ستھرا رہتا ہے, شراب سے دور رہتا ہے, زنا سے دور رہتا ہے, ڈرگس سے بچ کے رہتا ہے, زبان سے گندی باتوں سے بچتا ہے. یہ مومن. جو کافر ہے اس کو کیا ہے, سب چیزاں کرتا ہے. کیا وہ عام کبیٹ جام مار کو کھینچ کیا بولتی اس تو ملو آپ تو معلوم نہیں سن کو. میرے دوستو میرے عزیزو میرے بھائیو, مجھے کھل کے کہنا ہے کہ ہم مومن ہیں تو مومن بن کے رہنا ہے. مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے نماز جمعہ پڑھ لیے پھر چلے گئے پھر اگلی جمعہ کو آ گئے, بیچ میں مر گیا تو کیا ہوا بھائی, بیچ میں مر گیا تو کیا ہوا. اسی لیے مومن ہر پل ہر پل مومن رہنا ہے. ایک اتفاق کی بات ہے, بڑی پتے کی بات ہے. کیا ہے, جب مومن گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کا باہر نکل جاتا ہے, جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا تو پھر ایمان اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ خطرے کی بات ہے. گناہ کے وقت اگر موت آ جائے تو کیا ہوگا, راتوں کو بیٹھ کو نوجوان گندے گندے بلو موویاں دیکھتے. ایمان اگر چلا گیا اس وقت موت آ گئی تو کیا ہوئیں گا, سوچو. لوگاں کیا سمجھتی فون میں ہمیں کیا ہونا, واچ کر لیو کون پوچھنے والا ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا نا, اللہ ہر جگہ موجود ہے. کہاں جاؤ جہاں جاؤ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. او جن و انس, تمہاری طاقتیں, تمہاری جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, تمہاری ایبلٹیز ہیں, تم جو کیپیسٹیز رکھتے ہو اس کو استعمال کر لو اور جہاں چاہے چلے جاؤ, زمین کے اندر آسمان کے اوپر جہاں چاہے چلے جاؤ, تم پھر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. دیکھو کہاں بھاگ سکتے. رات کے گناہ کرنے والوں, دن میں نمازیں چھوڑنے والوں, جھوٹ بولنے والوں, دھوکہ دینے والوں, یہ سب جو ہے کافروں کی نشانی, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان ایماندار, مسلمان اللہ کو سبمٹ کرنے والا, جو ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا. اسی لیے میرے دوستو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے, ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم صرف جمعہ میں مسلمان بن جائیں گے تو کام نہیں چلے گا, हम सिर्फ मस्जिद को आके जो है मुसलमान बन के जो दिखा दें तो काम नहीं चलेगा। अल्लाह हमें हर जगह देख रहे हैं, मस्जिद से ज्यादा मस्जिद में बाहर, मस्जिद के बाहर अल्लाह देख रहे हैं। क्योंकि मस्जिद में हम तो मुसलमान बन के होते हैं माशाल्लाह, मस्जिद में हम अवॉइड करते हैं कोई काम ना हो ऐसा जिससे अल्लाह नाराज हो, लेकिन मस्जिद के बाहर हम जो है खुल के काम करते हैं, टोपी निकाल दिए, हेयर स्टाइल बना लिए और फिर जो है बटन खोल लिए, हाँ माशाल्लाह, फिर सीना दिखा दो, स्टाइल मार को चलते रहे, अब उसमें चार लफ्ज जो है गंदे भी बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह माफ करे, ये क्या है? ये सब मोमिन की शान नहीं, मोमिन की शान नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दो चीजों की हिफाजत कर ले, जो शख्स दो चीजों की हिफाजत कर ले, मैं गवाही देता हूं वो जन्नती है। एक चीज जो है जबान है, आज जबान का लगाम ही नहीं, मुंह में आए सो भक्ति, गालियां, गंदे बातें, फहिश बातें, ऐसा लगता है जैसे जबान इसीलिए बनी है। नहीं दोस्तों, जबान है अल्लाह के जिक्र के लिए, जबान है कुरान की तिलावत के लिए, जबान है जो है अच्छी बात बोलने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या कहते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो शख्स अल्लाह पे ईमान लाता है, आखिरत पे ईमान लाता है, फल्यकुल खैरन अव लियस्मित, वो अच्छी बात करेगा वरना खामोश रहेगा। जो शख्स अल्लाह पे ईमान लाता है और आखिरत पे ईमान लाता है, वो बुरी बात बोल ही नहीं सकता। अब हम खुद महसूस कर लियो कि हम जो है कितनी अच्छी बातें करते हैं और कितनी बुरी बातें करते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, ये सब चीजें बेहतर करनी है। जुमा का मकसद यही है, एक दूसरे को रिमाइंड कराना है, हमें पहचान कराना है। आप ससुर ने इरशाद फरमाया, एक वक्त अबू जहल आया, आप ससुर मजलिस में बैठे हुए थे, गौर से सुनिएगा, मैं खुल के आपसे अपना समझ के बात कर रहा हूं और मेरी बात में जो है आपको कोई तकलीफ हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा हक है ये, मैं आप सबका अपना घर का एक फर्द हूं और मैं इसीलिए मैं खुल के बात करते हुए खुशी महसूस करता हूं। जब मैं अमेरिका में अमेरिकन लोगों के साथ खुल के बात कर सकता हूं तो मैं आप लोगों से क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका मेरा मुल्क नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आज उसको मेरा मुल्क बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहां जो है अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से दीन की खिदमत में अल्लाह ने मुझे कबूल किया है, वहां जब मैं खुल के हक और बातिल की बात कर सकता हूं तो आपसे बात करने में मुझे क्या झिझक? ये जुल्म होगा अगर मैं नहीं बात करूंगा। तो इसीलिए मैं आप सबको खुल के कह रहा हूं, अबू जहल आया मजलिस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, बड़ी गंदी बातें की, बहुत फहश कलामी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। जब वो चला गया तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे आप मुस्कुराए? आज हमने बड़ी अजीब सी चीज देखी, बताइए कि आप क्यों मुस्कुराए? वो गाली दे रहा था, आपको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? जरा गौर से सुनिएगा। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो सभी, क्या भी आवाज नहीं आ रही, बेंगलुरु वाले दूध नहीं पीते की? अब इमाम साहब को दूध पिलाने तैयार हो गए, मैं नक्को भी रुको बाद में पीतूंगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक आईना हूं, मैं एक आईना हूं, वो मेरे सामने खड़ा हुआ और उसने जितनी भी बातें की वो उसने सही की, वो खड़ा हुआ तो उसका चेहरा नजर आया और जो कुछ कहा वो अपने लिए कहा, वो मुझे नहीं कहा। कितनी बड़ी बात कि उसने जितनी बुराइयां की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर वो अपने आप को कहा। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह से हम सब एक दूसरे के आईने हैं। हमें जुमा में जब आते हैं तो एक दूसरे को याद दिलाना होगा कि हम मुसलमान हैं, तो सिर्फ मस्जिद के मुसलमान नहीं है, शादी में भी हम मुसलमान हैं। शादी में गाने, नाच, बेशर्मी की इंतहा, बेंगलुरु वाले तो बड़े मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर, शादी देखना तो बेंगलुरु की देखो। अरे क्या मजाक है भाई, शादी शादी है। आज देखो बच्चियां दो खुदकशी कर ली, आयशा नाम की बच्ची, जालिम अल्लाह उसको हिदायत दे, उसके शोर को इतना जुल्म किया कि वो समंदर जो है दरिया में, वो साबरमती दरिया में खुद को मरी। देखो मैं अमेरिका में, देखो यहां की खबर है मुझे, कितने अफसोस की बात। ठीक है मेरी बेटी नहीं थी, ठीक है आपकी बेटी नहीं थी, लेकिन वो किसी की तो बेटी होगी, उसको किसी ने उस पर जुल्म करके उसे मारा, कितना बड़ा गुनाह है पूरे इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया में जो एक शर्म की बात है। गैर जो है इसी को नफरत करते हैं, गैर काफी यही कहते हैं कि ये लोग औरतों के साथ जुल्म करते हैं, कितनी गलत बात। अमेरिका में मेन चीज इस्लाम में लोग ना आने की वजह यही है, औरतें कहती हैं कि इस्लाम में मारते हैं औरतों को, इस्लाम में सिखाया जाता है औरतों को मारने के लिए, इस्लाम में जो औरतों को गुलाम समझते हैं, इस्लाम में औरतों को जूती समझते हैं, ये गलत है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। हम जाहिल लोग हैं, हमने इस्लाम को नहीं समझा है। जो औरतों को मारते हैं वो गुनाह करते हैं, जो औरतों को जूती समझते हैं वो खुद जूती हैं। अल्लाह हम सब की बात, औरतों की इज्जत करो मेरे दोस्तों, बच्चियों को मत मारो जहेज के लिए। हम औरतों को जो है जहेज के लिए नहीं बनाए। जिस बच्चियों की शादी नहीं उनकी हेल्प करो। शादी करो तो क्या बोलती, मैं तैयार हूं दूसरी शादी करने के लिए। अरे भाई तू पहली शादी को संभाल, दूसरी कहां से करता हुँ? दूसरी शादी करने की इमाम साहब तरकीब नहीं, करो दूसरी, करो तीसरी, करो चौथी, करो पहले लायक तो बनो, उसका हक अदा करो। शादी करना बड़ी बात नहीं, शादी करती तो कई को ख्वाहिश पूरी करने के वास्ते नहीं, शादी करने का मकसद जन्नत में जाना है। मियां बीवी दोनों जो है एक पहिए के जो है, जिंदगी के जो है एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों मिलकर अल्लाह को राजी करते हुए, हराम कामों से बचते हुए, अपनी औलाद की सही तरबियत करते हुए जन्नत को जाने वाले काम करने। मकसद ये शादी का। आज शादी का मकसद क्या है? पलन तोड़ ला हौल वला मंजे भी नहीं मालूम भाई लोगा बोले। शादी का मकसद पलन तोड़ करते क्या जी, ये पलन तोड़ खूब खाना जंपा मारना। अल्लाह हम सबकी हिफाजत कर मेरे दोस्त, हमारे बच्चों की हिफाजत कर। हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन की हिफाजत करे, हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन बेटी की हिफाजत करे। एक औरत की चार मुहाफिज हैं, एक औरत के चार मुहाफिज हैं, बाप, बेटा, फिर क्या भाई, भाई, फिर क्या, शोहर, मंजाला, खूब माल्ला। क्या मुसीबत, ऐसे लड़के को मत दो अपनी बेटी जो जहेज मांगे, ऐसे लड़के को मत दो जो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो है मेरी बीवी जो है खूब जेवर लेके आएगी, खूब जो है जोड़ा लेके आएगी, खूब माल लेके आएगी। और ये हराम है। जो लोग जोड़ा देते हैं और जहेज देते हैं या जो लोग मांगते हैं, अगर खुशी से आप लोग प्यार मोहब्बत से खामोशी से करते हैं वो तोहफा है, लेकिन ये जो चीजें आजकल रिवाज में पड़ी हुई है, मेरा बड़ा दिल दुखा दो दिन से भाई। ये चीजें मैं तो समझा कुछ पॉलिटिक चीजें होंगी, लेकिन अचानक मैंने जब मेरे पास किसी ने मैसेज भेजा तो मेरा दिल दहल गया कि एक बच्ची को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया कि उसने जो है जहेज की चीजें नहीं लाई अपने बाप से। कितनी बड़ी गलत बात। मेरी बेटी नहीं थी जैसे मैंने कहा, यकीनन आप सब में किसी की बेटी नहीं होगी, लेकिन वो तो अपनी बहन थी ना इस्लाम के हिसाब से, मुसलमान सब भाई बहन है। तो यहां बेंगलुरु में सुना बहुत चलता है और कर्नाटक में सुना बहुत होता है, इसको कट डाउन करो, कट डाउन करो। और नौजवान सुना शराब में, ड्रग्स में बहुत फंसते जा रहे हैं, और ये साजिश है गैरों की कि नौजवानों को लड़कियां बाजियों में लगा दें, जिनाकारी में लगा दें, और शराबखोरी में लगा दें, ड्रग्स में लगा दें, ताकि वो बर्बाद हो जाए, और वो कामयाब हो रहे हैं और हम जो है खामोश बैठे। मैं मानता हूं आप सब लोग नहीं है इसमें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जहां कहीं भी है अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे जो है क्या कहते हैं माहौल बनाकर उनको तोहफे तायब देकर दीन की तरफ माइल करो। हम जब अमेरिका में रहकर जो लोग ड्रग्स में हैं उनसे मिलकर उनसे दीन की बात करके उनको मस्जिद को लाना चाहते हैं और मस्जिद को लाते हैं और उनको जो है उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, जो शराबखोरी में है, जो जिनाकारी में है, जो हरामकारी में है, उनसे मिलते हैं, उनको जो दीन समझाते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते। आप लोग माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे मालूम है फिजोटॉन के लोग सुना बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, अल्लाह आप लोगों की मदद करे। लेकिन ये पढ़ना लिखना उसको इस्तेमाल करो, टाइटल से काम नहीं चलेगा। आई एम सो एंड सो इज नॉट वर्क, वी वांट टू डू प्रैक्टिकल। हम क्या है हम करके दिखाएं, हम क्या है करके दिखाएं। हम सबसे पहले मुसलमान, हम सबसे पहले जो है अल्लाह के बंदे, हम सबसे पहले जो है अल्लाह के हुक्मों को लेकर चलने वाले लोगों में से, बाद में फिर दूसरे टाइटल हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, मिलियनर्स हैं, सो एंड सो क्या क्या जो भी टाइटल है वो रख लो। ये सब चीजें खबर में नहीं आएंगी, खबर में यही चीज आएगी तुमने जो किस बच्ची की हिफाजत की, तुमने किस बच्चे की हिफाजत की, तुमने जो किस भाई की मदद की, तुमने किस बहन की मदद की, तुमने किस बेटी का ख्याल किया, तुमने किस जो है क्या कहते हैं बेवा की मदद की। ये सब चीजें काम आई, और जिंदगी का क्या भरोसा। कल ही की बात है, अल्लाह मगफिरत करे, एक मेरा जो है दोस्त का पड़ोसी नौजवान बच्चा मेरे शागिर्द की तरह 35 साल का, अच्छा 35 साल का आप तो जानते हैं अच्छा खासा हटा कटा, रात में सोया सुबह में उठा नहीं, रात में सोया, अभी दो दिन की बात है टैंक गार्डन में एक बच्चा, यही बेंगलोर की बात है। मैं जनाजे में उस वक्त जा नहीं सका, कुछ मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई। 35 साल का नौजवान बच्चा, इसलिए नहीं तकलीफ हुई कि वो मर गया, इसलिए तकलीफ हुई कि जो अचानक मौत आई। किसने देखा मौत, मैं आज आपके साथ बैठा हूं, आप सब हम सब बैठे हैं, पता नहीं कल क्या पल का क्या होगा, किसको मालूम। डरा नहीं रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं, ये जहन से निकाल लीजिए। मैं जवान हूं, मैं हेल्थी हूं, मैं वेल्थी हूं, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, उन्होंने बुढ़े मौजूद नहीं, उन्होंने मरे के बाद में कब की टाइम आता है, ये सब बेवकूफी है। हमारे अब्बा का 4 महीने पहले इंतकाल हुआ, उनसे बड़ी उम्र के लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे हो गए। जिंदगी में कब मौत आती किसी को नहीं मालूम। 15 दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, मुझे कोरोना वायरस हो गया था, अमेरिका में था, काफी तकलीफ में था मैं। अब्बा मुझे फोन करके समझा रहे, तुझे क्या हो गया बेटा, तू क्यों कमजोर हो रहा है, तू जवान बच्चा है, तुझे कुछ नहीं होगा, हमारी दुआएं हिम्मत से काम ले, मेरा बाप मुझसे कह रहा है। और 15 दिन के बाद वो मौत के मुंह में जा रहा है। देखो बताओ कैसी जिंदगी। मुझे भी कोरोना वायरस हो गया था लॉकडाउन में 8 महीने पहले, लेकिन कोरोना वायरस से या जो है कोई और वायरस से आदमी मरता नहीं है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। मेरे सामने कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ, अल्लाह ने उनको शिफा दे दिया। और मेरे वालिद को कोरोना वायरस नहीं था, डॉक्टरों ने जालिमों ने सिर्फ पैसों के लिए उनका गलत ट्रीटमेंट किया। उनको पेट में तकलीफ है, पेट में उनको जो आंतों में कुछ सूजन हो गई थी उसका इलाज करने के बजाय उनको जो कोरोना वायरस का इलाज और उसकी 5,000-5,000 की 50,000-50,000 की जो इंजेक्शन दे रहे हैं, तो क्या होगा उस बंदे का। यह जुल्म हो रहा है आजकल, इसको कौन रोकेगा, उसको कौन रोकेगा मेरे दोस्तों। इस जुल्म को गुस्सा कर लेना, चीख लेना, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो है जिंदगी जो है बहुत बड़ी नेमत है। हम जहां जुल्म हो रहा उसको रोकने के लिए क्या हमने प्लान किया है, जहां जो है ज्यादती हो रही है उसको रोकने के लिए हमने क्या प्लान किया है। हमें इस तरह से दीन को लेके चलना है। सिर्फ नमाज को आगे रहे, जुमा पढ़ लिए रहे, अब छोड़ क्या करना देखेंगे, फिर अगली जुमा जाएंगे। ये जिहालत है, कब तक चलेगी। बचपन से देख रहा था 55 हो रहे हैं, अभी भी वही चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। जुमा से काम नहीं चलेगा। वंस ए व्हाइल वी कम टू मस्जिद, दिस इज नॉट वर्क अहबाब। वी नीड टू कम रेगुलरली टू प्लीज अल्लाह तबारक व तआला। वी नीड टू सीरियस एंड सिंसियर टू प्लीज अल्लाह तबारक व तआला। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमने समझा कॉलेज चले गए तो कामयाबी हो गई, हमने समझा डिग्री ले ली तो कामयाब हो गए, हमने समझा कि जो पैसा कमा लिया तो कामयाब हो गए, हमने समझा कि लंदन और अमेरिका चले गए तो कामयाब हो गए। कामयाबी तो अल्लाह ने कहा है, अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तवून अम्मल्लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम जन्नातुल मावा नुज़ुलम बिमा कानू यअमलून। क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात देखो क्या अंदाज है। कह रहे हैं जो मोमिन है वो काफिर दोनों बराबर नहीं हो सकते, और अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं प्रैक्टिकली, उनके अंदर जो है ईमान मजबूती के साथ कंटिन्यूसली अंदर बाहर मस्जिद में कहीं भी हो मौजूद है, और उससे जो है ईमान की झलक और उसकी तजल्ली नजर आ रही, तो क्या होगा। अल्लाह कह रहे हैं वो मेरे मेहमान है। अम्मल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात फलहुम जन्नातुल मावा नुज़ुलम बिमा कानू यअमलून। वो अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के मेहमान है, कितनी बड़ी बात है। जो अल्लाह का मेहमान हो कितनी बड़ी बात है, ये समझने की बात है। वही समझ सकता है जिसका ताल्लुक अल्लाह से है। किसी ने जो है प्रेसिडेंट से ताल्लुक बनाया, किसी ने प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुक बनाया, किसी ने जो है मालदार से ताल्लुक बनाया, तो उसको मालूम है उस ताल्लुक का क्या मकाम है। तो मेरे दोस्तों मुसलमान को चाहिए कि वो मालूम हो अल्लाह से ताल्लुक हो तो उसका क्या मकाम है। अल्लाह से ताल्लुक उसका सारी दुनिया जो है उसके कदमों पर। हम बता नहीं सकते अल्लाह के ताल्लुक का क्या फायदा है। अल्लाह कह रहे हैं वो मेरा मेहमान है जन्नत में, क्यों, क्योंकि उसने अच्छे काम किए थे, उसने जो है अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों पे लेके जो है गुजारी थी। तो इसीलिए मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि सबसे पहले यही कहूंगा कि हम कहीं भी हो झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। हाँ इरादे करो, झूठ बोलना आजकल क्या हो गया, जो झूठ नहीं बोलता उसे बेवकूफ समझती, बेवकूफ है वो जो झूठ बोलता है, क्योंकि अपनी जहन्नम को बना रहा हो। और इसी तरह से गीबत से बचेंगे। गीबत क्या है, उसकी बुराई इसकी बुराई आम हो गई, ये बला आम हो गई। उससे क्या है, भाई भाई का दिल मिला हुआ नहीं, खानदान में तोड़, मस्जिद में तोड़, महल्ले में तोड़, पूरे मुसलमाना बट को हर एक दूसरे से नफरत। अल्लाह हम सब की फात। गीबतों से बचना है, गीबतों से बचना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप सबसे ये दरखास्त है कि कहीं भी गलत काम हो रहा उसको रोकने के लिए एक अच्छी सी जो है बैठकर फिक्र के साथ एक प्लानिंग करी, एक प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई कहीं भी जैस का मसला हो या कहीं भी औरतों के साथ जुल्म हो रहा हो या कुछ भी हो रहा, तो अच्छे तरीके से मुसलमान क्या समझता, वो मुसलमान ही नहीं जो चीखा ना मारे, जो लड़े नहीं, जो गाली गलौज ना दे, ये नहीं है मेरे दोस्त। मुसलमान का मतलब वो कभी गाली गलौज नहीं करता है, मुसलमान का मतलब वो कभी लड़ता नहीं, मुसलमान का मतलब गैरों से भी वो हमदर्दी करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं एक मजलिस में, सामने से एक जनाजा गुजरता है, गौर से सुनिएगा, सामने से एक जनाजा गुजरता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपके खानदान का भी नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है, आपके आंखों से आंसू क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा, जरूर से सुनिएगा गौर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जिंदा हूं, मेरे सामने वो इस्लाम के बगैर जा रहा, इसीलिए मेरे आंखों से आंसू। ये फिक्र थी गैरों के साथ, हमारे अंदर मुसलमानों में फिक्र नहीं, हमारे अंदर आपस में एक दूसरे में मोहब्बत नहीं, एक दूसरे से मोहब्बत करें। इस्लाम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम हर चीज से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत ना करें। इस्लाम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम हर चीज से ज्यादा आप सल्लम से मोहब्बत ना करें। इस्लाम उस वक्त तक जो है कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि जो है अल्लाह के लिए हम एक दूसरे से मोहब्बत ना करें। और इस्लाम जो है कंप्लीट उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत करने के लिए आप सल्लम ने फरमाया एक दूसरे से सलाम करें। एक दूसरे से क्या करें? कसरत से सलाम करें, सलाम से मोहब्बत पैदा होगी। ये ना देखें कि वो कौन से गांव का है, वो कौन से कबीले का है, वो कौन से खानदान का है, वो कौन से शहर का है, वो कौन से घर का है, वो कौन सी मस्जिद का है, वो सब छोड़ दें, ये सब बकवास हैं। हम सब एक हैं, हमें नेक बनना है, हम सब एक हैं, हमें नेक बनना है। अल्लाह ताला क्या करें, अल्लाह कह रहे हैं बाकायदा, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि ए इंसानों, तुम में से हमने कुछ लोगों को मर्द बनाया, कुछ औरतें, मतलब हमने जो है आप सबको हमने बनाया, उसमें मर्द औरतें और फिर कुछ लोगों को किसी कबीले में, किसी खानदान में, किसी मुल्क में, किसी शहर में, सब क्यों? सिर्फ तारुफ के लिए, सिर्फ तारुफ के लिए, लितारफू, अल्लाह ताला कह रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। मैं फ्रिजरटोन का हूं, मैं बेंगलुरु का हूं, मैं टुंकुर का हूं, मैं जो है हिंदुस्तान का हूं, मैं अफगानिस्तान का, सिर्फ तारुफ के लिए। वरना अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह के नजदीक कोई प्रेशियस ऑनर रेस्पेक्ट है तो क्या है? तख्वा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तो मेरे दोस्तों उस पर मेहनत होनी चाहिए, उस पर मेहनत ही नहीं। अब रमजान आ रहा है, किसी को परवाही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे रमजान आ ही नहीं रहा है। एक महीना पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो महीने से तैयारी करते थे, और रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया रमजान अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। शाबान में इतनी कसरत से बात करते थे, ऐसा लगता था जैसे कि जो शाबान भी जो है अल्लाह का महीना है, पूरी तरह से प्रैक्टिस। तो मेरे दोस्तों अभी रजब माशाल्लाह 15 तारीख है, पता नहीं कुछ तारीख हो, कितनी तारीख हुई रजब की, क्या तारीख चल रही? देखो रजब की 20 तारीख चल रही, मैं सब जा 15 तारीख, अभी डेढ़ महीना भी नहीं। पिछला रमजान तो बड़ा अन्यालम गया, मस्जिदा बंद, मस्जिदा में नहीं, घर में क्या तकलीफ उठाए। अमेरिका में तो नमाज जो है ईद की जो है कौन की कहाँ की कंप्यूटर में पढ़ रहा है, उन्हें घर में पढ़ रहा है। अब बोलो जरा लोग बेवकूफ़ बनाए, ऐसा भी हो जाते हैं, मजबूरी है, ऐसा सब नहीं होती। घर में पढ़ लिया तो ईद की नमाज भी बड़ा मजमा हुआ, तो खैर वो अलग चीज़ है, वो सब छोड़ो। लेकिन मैं बता रहा बड़ा जो रमज़ान आजमाइश करा पिछला, इसीलिए दुआ करो ये रमजान अच्छा गुजरे। लेकिन सब अहद करो रमजान में नहीं, रमजान से पहले भी रमजान की तैयारी करेंगे। अब जैसे रमजान की तैयारी अगर पहले से करें, मस्जिद को आते रहे, मस्जिद में वक्त गुजारे, कुरान की तिलावत शुरू कर दिए, सदका खैरात शुरू कर दिए, जो भी अमान है रमजान के अभी से शुरू कर दिए, रमजान में आसान हो जाता। एकदम रमजान में क्या होता है, पहले दिन बड़े खुशी से जाती है, फिर दूसरे दिन जो चांद रात का वारी पहुंचती। क्या है भाई? दूसरे दिन चांद रात का वारी, अभी एक दिन नहीं गुजरा चांद रात की फिक्र, चांद रात को बड़े एहतमाम से जाती, اور پھر اس میں بیچ میں ختم القرآن کو بوندی کھانے جاتے. اللہ ہم سب کی حفاظت. آمین بولو بھائی. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کی بھی تیاری ہو, اور سب سے اہم چیز کیا ہے, یہ عہد کر لیجئے ہم کہیں بھی ہو اپنے آپ کو بھی دین پہ لے کے چلیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب بنگلور میں یا اس ملک میں جہاں بھی اگر جو ہے مسلمان دین سے ہٹے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں. اب میں امریکہ میں بیٹھ کے ہندوستان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں, اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. امریکہ میں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. اب آپ لوگ خود یہاں رہ کے اپنے لیے نہ دعا کریں, اپنے بھائیوں کے لیے نہ دعا کریں تو کتنی شرم کی بات ہے. اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مجھے دوسری جورو ہونا, کیا ایسا بولتے ہیں سو دوسری جورو ہونا, اے اللہ میرے بھائی کو دوسری جورو دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے منجے ملتی ہے دوسری جورو, بعد میں میرے بھائی کو ملتی ہے. کتنی اچھی بات بولے, سب خوش. کیا دیکھو سب خوش, ذرا مسکراتے رہو, مجھے ڈر لگ رہا ہے. ایسا غور سے بیٹھیں کہ لو انڈر جانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میجر سنت تھی ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے, جس سے چہرہ لگتا تھا چودھری کا چاند. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, قسم خدا کی میں نے چودھری کے چاند کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, پھر میں نے چودھری کے چاند کو دیکھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. چودھری کے چاند سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک منور تھا. کیوں بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی, مسکراتے تھے. جا کچھ چھوکریاں کے سامنے مسکرانا نہیں, او ہمارے مفتی صاحب بولے مسکراؤ گو اس کے واسطے ہمیں مسکرانا, چھوکریاں مار دی چپل لے کیا مفتی کا. آپس میں مسکرایا کرو, دیکھو جو ہے چہرے میں رونق پڑتی ہے. مسکراتے رہے تو کیا ہے, چہرے میں رونق آتی ہے, خوبصورت لگتی ہیں, پھر دوسری شادی بھی اوکے ہو جاتی. ہاں میرے دوست, میں یہ بتا رہا تھا ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. اور دوسری بات جو ہے اس کی فکر کریں کہ جہاں جہیز کے بارے میں ظلم ہو رہا ہو, جہاں عورتوں میں ظلم ہو رہا ہو, جہاں کسی بھی معاملے میں ظلم ہو رہا ہو, ہم اس کو کیسے بچائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنی جوانی میں انہوں نے ایک جوانوں کی جو ہے ایک ٹیم بنائی تھی, اور انہوں نے طے کیا تھا, عہد کیا تھا, کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ کہیں بھی ظلم ہو تو ہم اس کو روکیں گے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اسلام پھیلانے کے بعد کریں گے. اسلام پھیلانے سے پہلے 25 سال کی جب عمر تھی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. نبوت تو 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام, دعوت کا کام 40 سال کے بعد شروع کیا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, رسول تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے اوپر کیا ذمہ داری آنے والی. تو میں یہی بتا رہا ہوں میرے دوستو, آپ سب سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنائی تھی کہ کیسے دین کو زندہ کیا جائے, کیسے جو ہے اللہ کے حکموں کو زندہ کیا جائے, اور جو ظلم کر رہا ہے ان کو روکا کیسے جائے. تو یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ ہم یہ شیخ اپنا اپنا دیکھ نہیں کرنا ہے, شیخ اپنا اپنا دیکھ. جیسے امریکہ میں کہتے ہیں مائی وے از ہائی وے, مائی وے از ہائی وے, کہ میرا راستہ جو ہے ہائی وے, میں کون پلٹ. ہمارے یہاں بڑے بڑے ہائی وے ہیں, ایک بار چلے گئے تو ایک کام سے مس ہوئے گا تو 10 میل 15-20 میل آگے مس ہوا تھا, پھر پلٹا لگانا 10-15-20 میل. تو ہمارے یہاں مشہور مائی وے از ہائی وے, ایسا نہیں ہے میرے دوست. زندگی بڑی انمول ہے. تم لوگ آپ لوگ سب جمعہ میں آئے ہیں ماشاء اللہ, صرف 2-3 منٹ ہیں. میں یہی آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دو, اور چھوڑ دو گندی باتیں کرنا, گالی گلوچ کرنا, اور غیبتوں سے بچو, اور اسی طرح سے اپنے امام کی عزت کرو, اور مسجد کا احترام کرو, مسجد میں وقت دو, اور جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرو, اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی برائی مت کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہی ریکویسٹ ہے, جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اچھے طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ دیکھو جو لوگ ہم سے جو نفرت کر رہے ہیں, جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھگا دو, یہ تڑکڑو ہیں, تڑکڑو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, بھگاؤ ترکی کو کہ یہ وہاں سے آئیں, وہ لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہمارے ہی لوگ, ہم نے دین کو چھوڑا, ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا, ہم نے قرآن کو چھوڑا, اللہ کے حکموں کو چھوڑا, تو غیروں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے باہر کے لوگ ہیں. حالانکہ ہم لوگ یہیں کے, میں یہی پیدا ہوا ہوں, تو میں وہاں امریکہ میں کوئی کرنا والا ملتا تو میں اس سے جا کے ملتا ہوں اور کہتا ہوں چنگیدا صاحب, وہ بھی خوش ہوا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بھائی انہیں کرناٹک کا, انہیں بنگلور کا. میں یہاں تھا بنگلور میں تو اتنا مجھے احساس نہیں تھا, جب ملک چھوڑا 22 سال جب باہر رہا تو مجھے ہندوستان اور ہندوستان کے لوگوں سے اور خاص طور سے کرناٹک اور بنگلور والوں سے بڑی محبت. کوئی بھی ملتا تو میں جا کے بڑی خوشی سے ملتا ہوں, اس کے ساتھ بات کرتا ہوں, کرنا نہیں ہے تو بھی آدھی انگلش آدھی کرنا مارتا ہوں, انہیں بھی خوش رہتا ہے. मेरी उठपटांग करना देखो, तो मैं यही बता रहा हूं मेरे दोस्तों, तो आप सबसे जब हमें मोहब्बत है तो इसका वास्ता देके कहता हूं कि हम अगर अल्लाह के हुक्मों को लेकर चलेंगे तो जो लोग हमारे दुश्मन है वो हमसे मोहब्बत करेंगे और अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उनके घर के बाहर पूरी सरदारों की टीम खड़ी हो गई, नंगी तलवार खड़ी हुई है और सब ताक में कि अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे, हम उनकी गर्दन को मारेंगे। अल्लाह ताला क्या करे, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, हमने सबकी आंखों में मिट्टी झोंक दी, सब आंखें मलते रह गए, किसी ने एक बाल भी बेका नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे तो अल्लाह ने सबकी आंखों में जो है मिट्टी झोंक दी। अल्लाह कह वह मारा मैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह हम सबकी हिफाजत। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हमें कभी किसी से नहीं डरना है। जब हम अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह की जिंदगी की अल्लाह के हुक्मों को जो अल्लाह ने जो हुक्म दिए उस जिंदगी को अपनाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत और हमारे यकीन को मजबूत, लोगों का खौफ दुनिया का खौफ हमारे दिल से निकालेंगे, लोग हमसे मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह हम सब की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैं आप सब से यही कहूंगा कि हम मोमिन हैं तो हमें मोमिन बन के रहना। हम मोमिन बनेंगे तो क्या काम है ने? अल्लाह हमें हमारी मेहमान नवाजी करेंगे जन्नत में। अल्लाह हम सबको सआदत नसीब फरमाए। अरे क्या भाई, सॉरी ना भाई, मैं पहला भी जुमा पढ़ाया दूसरा भी खुतबा दे, तुम्हें सोए तो मेरा दिल नहीं जलता, अभी और आधा घंटा ले तू मंजे क्या भी नहीं, ऐसा ऑलरेडी मैं लेट कर डाली। सब आमीन बोलो जोर से, क्या आमीन आमीन बोलने दूध पीना पड़ता है। डरो ना को, अल्लाह ताला सब मसले हल करेंगे, लेकिन हमें क्या बनना है, सही मोमिन बनना है। मोमिन का मतलब झूठ बोलना, धोखा देना, हराम कामों में लगे रहना, बोलो क्या, हर बुराई से बचना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमारे मसले हल करे। एक मिनट की छोटी दुआ करते ठीक है, क्योंकि मैं चले जा रहा हूं, मेरा जो है मंगल को सफर है। दुआ करो अल्लाह आसान करे, फिर अगली मुलाकात अल्लाह कराए इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप सब के लिए दिल से मोहब्बत करता हूँ, दिल से आप सबका मेरा ताल्लुक है। आप भी जो है दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह जितना भी मजमा है इस मजमे को कबूल फरमा, अभी जो हमने दीन और ईमान की बात की उसे कबूल फरमा, हमें झूठ से बचा ले, धोखे से बचा ले, चुगली गिबतों से बचा ले, हमें जहालत से बचा ले, औरतों पर जुल्म करने से बचा ले, औरतों की इज्जत करने वाले बना, जो लोग जुल्म करते हैं उनको रोकने की हमें ताकत इस्तेआत अता फरमा, लोगों का खौफ हमारे दिल से निकाल दे, लोगों की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे, तेरी मोहब्बत और तेरा डर खौफ हमारे दिल में अगलब फरमा, जहालत से बचा ले मौला, जहालत से बचा ले, कुफ्र शिर्क बिदा से बचा ले, अल्लाह दीन में इस्तकामत अता फरमा, अल्लाह दीन में इस्तकामत अता फरमा, गफलत की जिंदगी से हिफाजत फरमा, हमारे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के मगफरत फरमा, और भी जितने भी लोग अल्लाह अब तक आदम इस्लाम से लेके और खासतौर से हमारे खानदान वाले रिश्तेदार और जितने भी लोग मुसलमान इंतकाल के सब की मगफरत फरमा, सब की खबरों को नूर से मनवर फरमा। इस साल खासतौर से कोरोना वायरस की वजह से जो लोग इंतकाल करके उनकी खसूसी मदद फरमा, उनकी मगफरत फरमा, और खासतौर से हम सब की मगफरत कर दे, हम सबको जन्नत अल फिरदौस नसीब फरमा, जहन्नम से बचा ले। खासतौर से मेरा अमरीका का सफर 10 तारीख का आसान कर दे। ये जितने भी लोग बैठे हैं इन सब की मदद फरमा, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, जुमा में आए, इनके आने को कबूल फरमा कर, इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी नस्लों के लिए, इनके आले औलाद के लिए हिदायत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले, इस मस्जिद वालों को खूब नवाज दे। ऐ अल्लाह इस मस्जिद की जो कम्युनिटी है, ट्रस्टी हैं, सबकी मदद फरमा, उनके तमाम परेशानियों को दूर कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर, और उनके खिदमत को कबूल करके उनको अच्छा सा सिला और बदला अता फरमा। इमाम साहब और मुअज्जिन साहब और जो भी यहाँ खादिम है उन सबकी भी मदद फरमा, उन सबकी भी जरूरतों को पूरा फरमा। हम सबकी जान माल आबरू इज्जत ईमान की हिफाजत फरमा, रिज़्क़ उम्र वक्त सेहत ईमान तक़वे में बरकत दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल कर ले, हमें सच्चा पक्का मोमिन बना दे, रमज़ान की बरकतों से माला माल कर दे।